रैना की सांसें थम सी गई थी जब उसने अखिल को सामने बैठे देखा। ये वही चेहरा था जिसे वो अनदेखा करना चाहती थी, वही नजरें जो हर जगह उसका पीछा करती सी लगती थी। उसका दिल कह रहा था, नहीं, ये सपना है, अखिल यहाँ कैसे? पर सपना नहीं था, वो वही था, सफ़ेद टेबल क्लॉथ के बीच, काले सूट में, पूरी रॉयल शख्सियत के साथ। रैना के कदम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। हर कदम के साथ उसके भीतर सवाल गूंज रहा था, यहाँ भी? आखिर इसको चाहिए क्या मुझसे? मैं जहाँ भी जाती हूँ ये वहीं आ जाता है। मेरा दिमाग खराब करके रखा है इस आदमी ने। वो टेबल तक पहुँची। उसकी आँखें अखिल पर थीं, लेकिन वो नज़रें नहीं मिला पा रही थीं। अखिल ने कुर्सी पर आराम से हाथ टिकाए, चेहरे पर वही सधी मुस्कान और आँखों में छिपी ठंडी चमक। उसने ऐसे देखा जैसे सामने कोई अनजान शेफ खड़ी हो। आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, अखिल ने धीमी गहरी आवाज़ में कहा। आई लाइक दैट, खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। रैना का दिल एक पल को उछल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि अखिल कुछ तो कहेगा, पुराने लहजे में, पहचान कर, पर नहीं, उसने तो ऐसे बात की जैसे वो उसे जानता ही ना हो। मैं यहाँ आज से रोज़ खाना खाने आऊँगा, अखिल ने आगे कहा, और मैं चाहूँगा कि मेरा स्पेशल फूड सिर्फ आप ही बनाएं। उसकी आवाज़ में कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे आदेश भी हो और तारीफ भी। रैना ने मन ही मन दांत भींचे। ओह, तो आप ड्रामा कर रहे हैं साहब, पहचानते भी नहीं और सीधे ऐसे ऑर्डर, क्या समझते हैं खुद को? लेकिन चेहरे पर उसने कोई भाव नहीं आने दिया। उसने वही औपचारिक ठंडा लहजा अपनाया। जी सर, जैसा आप कहेंगे, बिल्कुल, मैं आपको खाना वैसे ही बनाकर दूंगी। अखिल ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, जैसे कोई अनकहा संदेश देना चाहता हो। फिर होठों पर हल्की मुस्कान आई और वो चुपचाप पानी का घूंट भरने लगा। इस बीच मैनेजर भी वहीं खड़ा था। उसने अखिल की ओर झुककर कहा, थैंक यू सर, आपके जैसे बड़े लोग रोज यहां आएंगे, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अखिल ने बस सिर हिलाकर हामी भरी। उसकी आंखें अब भी रैना पर ही टिकी थीं। कुछ सेकंड ऐसे ही गुजरे जैसे दोनों के बीच हवा में खामोशी बोल रही हो। फिर अखिल ने कुर्सी से उठते हुए कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। वो अपनी टाई ठीक करता हुआ सधी चाल से बाहर की ओर बढ़ गया। रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुला और उसकी परछाई कांच पर उभी, फिर गायब हो गई। रैना वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल धड़क रहा था, माथे पर हल्की पसीने की नमी थी। उसने मन ही मन गुस्से से कहा, ये आदमी खुद को क्या समझता है, कहीं का लाट साहब, मुझे ऑर्डर दे रहा था जैसे मैं कोई उसकी पर्सनल कुक हूँ। वो पीछे मुड़ी तो देखा मैनेजर उसे गौर से देख रहा था। क्या सोच रही हो रैना, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए पूछा। रैना एकदम चौंकी। नहीं सर, कुछ नहीं, मैनेजर हल्के से हंसा। अरे मैं समझ सकता हूँ, इतने बड़े साहब जब खुद कहें कि उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना चाहिए तो सोचने वाली बात तो है। रैना चुप रही। उसका मन तो था कह दे, मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, पर होंठों से कुछ निकला ही नहीं। मैनेजर ने आगे कहा, देखो रैना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर अखिल सर रोज़ यहाँ आएंगे तो हमारे रेस्टोरेंट का नाम ही बदल जाएगा, और इसकी वजह तुम हो, तुम्हारी कुकिंग, तुम्हारी डिटेलिंग, तुम्हारा टेस्ट। उसने रैना की तारीफ करते हुए हाथ थपथपाया। तुम्हारी वजह से ही वो रोज़ आने की बात कर रहे हैं, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा, जैसा आज बनाया वैसा ही हर दिन, साफ सुथरा, स्पेशल और बेस्ट। रैना ने सिर झुकाकर जवाब दिया, ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे। लेकिन उसके मन में अब भी तूफान था। क्या सच में वो मुझे नहीं पहचान रहा, या जानबूझकर ऐसा कर रहा है? आखिर क्यों मेरे पीछे पीछे आता है? मैं उसे भूलना चाहती हूँ, पर वो हर जगह आकर मेरे रास्ते खड़ा हो जाता है। उसने गहरी सांस ली और किचन की ओर लौट गई। पीछे मैनेजर अब भी मुस्कुरा रहा था। उसके लिए ये बस बिजनेस का मामला था, लेकिन रैना के लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये उसके अतीत का अनचाहा सामना था। किचन का दरवाज़ा बंद होते ही बाहर की सारी आवाज़ें जैसे धुंधली पड़ गईं। बर्तनों की खनक, चूल्हे की सिजलिंग और मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। रैना ने एप्रन बांधा और बाकी ऑर्डर्स पर ध्यान देने लगी, लेकिन दिल और दिमाग के भीतर अब भी वही सवाल गूंज रहे थे। ये आदमी आखिर चाहता क्या है? कभी अनजान बन जाता है, कभी ऐसे बातें करता है जैसे पुराना रिश्ता हो, और आज ऐसे बैठा था जैसे कोई राजा और मैं उसकी नौकरानी। मेरी जिंदगी में तूफान खड़ा कर रखा है। उसने हाथ में पकड़े प्याज को काटना शुरू किया। चाकू की धार हर बार जैसे उसके गुस्से और उलझन को चीर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। स्टाफ के बाकी लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी को एहसास नहीं हुआ कि रैना के भीतर कितना शोर है। मैनेजर सर कहते हैं ये रेस्टोरेंट के लिए अच्छा है, लेकिन मेरे लिए क्या ये अच्छा है? मुझे हर दिन उसका सामना करना पड़ेगा, मैं तो भूलना चाहती थी उसे। वो खुद से बातें करती रही, लेकिन आवाज बेहद हल्की और कैजुअल थी, जैसे किसी दोस्त से गपशप कर रही हो। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां खिसकती गईं। 8 बजे का रश गुजरा, फिर 9 बजे की भीड़ छटने लगी। अब बस कुछ ही टेबल्स पर कस्टमर्स थे। रैना ने राहत की सांस ली। उसने आखिरी ऑर्डर को प्लेट में सजाकर बाहर भिजवाया। 10 बजते-बजते मैनेजर ने घोषणा की, ठीक है, अब क्लोजिंग टाइम है, सब लोग पैकअप कर लो। रैना ने एप्रन उतारा, हाथ धोए और अपने बैग को कंधे पर डाला। बाहर निकलते हुए उसने एक बार उस टेबल की ओर देखा जहां अखिल कुछ देर पहले बैठा था। कुर्सी खाली थी, लेकिन जैसे उसकी मौजूदगी अब भी वहीं बसी हुई हो। इस आदमी ने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी है, उसने बुदबुदाते हुए बाहर कदम रखा। सड़क पर हल्की हवा चल रही थी। रेस्टोरेंट से घर तक का रास्ता उसने पैदल ही तय किया। शहर की रोशनी, गाड़ियों का शोर और चलते हुए लोगों के बीच भी उसके विचार बार बार उसी पर लौट आते। घर पहुंचते ही दरवाजा खोला। हॉल में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। वो सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ी, बैग एक तरफ रखा और जूते उतार ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, तो सच है तुम्हें जॉब मिल गई है? रैना ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर विक्रम खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा भी। हाँ, रैना ने सीधा जवाब दिया, एक रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब मिली है। विक्रम ने कुछ कदम कमरे के भीतर रखे। मतलब अब तुम यहां से जाना चाहोगी? रैना ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस एक शांत सी ठंडक। वैसे भी यहां रहकर कोई फायदा नहीं है विक्रम, तुम्हारी शादी तो अब मोनी से हो चुकी है। हमारी शादी होने वाली थी पर हुई तो नहीं, तो मेरा यहां रहना किस काम का? विक्रम ने तुरंत कहा, नहीं रहना, तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हें यहां से जाने की जरूरत नहीं है। रैना ने हल्की हंसी में बात को टाल दिया। जरूरत क्यों नहीं है, अब मेरा यहां कोई हक ही नहीं बचा। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपना घर है, और मैं तो बस एक बोझ हूं। विक्रम ने सिर झुकाकर गहरी सांस ली। तुम बोझ नहीं हो, तुम जानती हो मैंने हमेशा चाहा है कि तुम यहीं रहो। अभी तुम्हारे पास कोई घर नहीं है, अकेली कहां जाओगी? कुछ पल खामोशी रही। रैना ने खिड़की की ओर देखा जहां बाहर का अंधेरा फैला था। हाँ, जब तक घर का इंतजाम नहीं होगा तब तक यहीं रहूंगी, लेकिन एक दिन मुझे जाना ही होगा विक्रम, मैं हमेशा किसी और की छत के नीचे नहीं रह सकती। विक्रम ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन रैना ने नजरें फेर ली। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था, न ठंडा न गर्म, बस भारी, लेकिन सब दिखावा। वो धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ गई। आज बहुत थक गई हूं, उसने कहा। विक्रम समझ गया कि बातचीत यहीं खत्म करनी होगी। उसने हल्की सी मुस्कान दी और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, ठीक है, आराम करो, और हाँ, जॉब के लिए बधाई, और अंकल मेरे कमरे हैं, हम बातें कर रहे थे। रैना ने मुस्कुरा दिया, जैसे कह रही हो अच्छा है। दरवाजा बंद होते ही रैना ने गहरी सांस ली। कमरे की चुप्पी अब उसके अपने सवालों की आवाज से भर गई थी।
कितनी अजीब जिंदगी हो गई है मेरी। एक ओर अखिल जो हर जगह सामने आकर खड़ा हो जाता है, दूसरी ओर विक्रम जो कहता है मत जाओ, पर मैं कहां जाऊं, मैं क्या चाहती हूं? उसने सिर पीछे टिकाया और आंखें बंद कर ली। दिल की धड़कन अब भी तेज थी, लेकिन नींद धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींचने लगी।